ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। म्यांमा में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। शुक्रवार को मांडले क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। इसके कुछ ही मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। इससे कई देशों में भारी जानमाल की क्षति हुई। थाईलैंड, वियतनाम, लाओ और दक्षिण पश्चिम चीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बीच म्यांमा के सैन्य नेतृत्व ने आज कहा कि शक्तिशाली भूकंप में अब तक 2056 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 3900 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 270 लोग अब भी लापता हैं। म्यांमा प्रशासन परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मेन ऑंग वाइंग ने देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। म्यांमा में बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। भारत, रूस, चीन, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य देशों ने मानवीय सहायता और बचाव दल भेजे हैं। भारत ने बचाव राहत कार्य में सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया है। इसके अंतर्गत राशन, टेंट और दवाएं भेजी गई हैं। थाईलैंड, वियतनाम, लाओ और दक्षिण पश्चिम चीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 18 लोग मारे गए, 33 लोग घायल हुए और 78 अब भी लापता हैं। इस बीच आपातकालीन दल ने लोगों का तलाश अभियान आज फिर शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का स्तर ऊंचा किया है। गृहमंत्री ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित गहन चिकित्सा कक्ष का लोकार्पण और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला रखी। श्री शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में की गई कई पहलों की जानकारी दी।
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम, 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए।
गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। श्री शाह ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के एक बड़े नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सोशल मीडिया में गृहमंत्री ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने गिरोह से 27 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। टीम ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। श्री शाह ने इस बड़ी सफलता के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मादक पदार्थ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सरकार लगातार इसके खिलाफ अभियान भी चला रही है। पंजाब पुलिस ने तरन तारण में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर पाकिस्तान और अमेरिका के ड्रग माफियाओं के संपर्क में था। राज्य सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध अभियान शुरू करने के बाद पुलिस ने सबसे बड़ी खेप बरामद की है। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ईद उल फित्र आज देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व रमजान महीने के समापन पर मनाया जाता है। ईदगाहों में और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार हॉकी इंडिया के सहयोग से 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 29 अगस्त से 7 सितम्बर के बीच आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया, भारत और पाकिस्तान सहित कुल 8 टीमें खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।